मैरिजेस बहुत ही ज्यादा दिलचस्प टॉपिक है। तो हम में से कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी कजन मैरिजेस हैं? अभी जरा हो जाए ना, वो प्रेवलेंस हो जाए। 1, 2, 3, 4 और कितनी कजन मैरिजेस हैं? बस सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें कजन मैरिज हम जनरली वो नहीं है खाला फूफी मामू का बेटा, सिर्फ विद इन फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे आर कॉमन, ठीक है, उसको हम कंसेंजुअस मैरिज कहते हैं, ऑल्टरनेट टर्म ये हम। तो 5-6 हैं हम इन लोगों में से कि 7-8 हैं, बस थोड़े जे हम। तो हमारे यहाँ तो देखिए अभी यहाँ पे अभी भी साइंटिफिकली प्रूव हो गया है हमारे मुल्क में कजन मैरिज नहीं है। आप ऐसे ही कहते हैं 60% है। आगे चलते हैं। इत्तफाक हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स होते हैं ना रिसर्च, वो इत्तफाकात ही होते हैं। जब हम कहते हैं ना सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो उसमें वो स्टैंडर्डाइजेशन कोई नहीं हमारी होती, हम कहते हैं बस रैंडम सैंपलिंग। तो ये रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन को मैं छोड़ के आगे चलूंगी ताकि हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। लेकिन सिर्फ मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी माशरे में या हिंदुस्तानी माशरे में ये नहीं है कि पुफी का बेटा उससे नहीं करनी, चाचा के पुत्र करनी, सब मामू चाहिए। ये चाइना में भी होता है सब, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, सिर्फ पर्टिकुलरली मुस्लिम माशरा नहीं या मिडल ईस्ट नहीं या ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया में ये मैरिजेस होती हैं, कंसेंजस मैरिज। लेकिन उनका इंसिडेंस पहले भी बहुत ज़्यादा था मुख्तलिफ माशरों में, अब हम ज़रा पढ़े लिखे हो गए तो इंसिडेंस हम चाहते हैं कि कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो दुनिया की इस वक्त ये स्टैटिस्टिक्स हुए हैं जो रिसर्च आर्टिकल्स की हैं, मेरी अपनी इनमें से कोई नहीं है। वो ये कहते हैं अबाउट 10% ऑफ मैरिजेज आर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कजन्स। आप बिलीव करेंगे स्टेटमेंट पे? मैं, मेरा तो दिल नहीं मानता, बट 10% इज वेरी लो। अगर इतना कम है तो रौला किस गल दा? 10% इज नेग्लिजिबल। अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन देखते हैं ना तो 10% नेग्लिजिबल है, बट स्टिल इशू है ये एक जिसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। इजिप्ट में वो कहते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में 80% के लगभग जो थी वहाँ पे होती थी कजन मैरिज। और उसके बाद स्मार्टन्स जो थे उनके अंदर ये मिला लेना आप 76% टोटल फर्स्ट एंड कजन मैरिजेस, इतना ज़्यादा इंसिडेंस। पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है 60%, जिसमें वो फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, बाकी कज़न सारे उनके अलग अलग भी परसेंटेजेस हैं, जो एक साहब पाकिस्तानी ने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और उसमें दिए हुए हैं। पता नहीं ये भी वो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है जिस पे हम ये परसेंटेजेस निकालते हैं। मैं आपको जो चीज़ पुट करूँगी वो इसलिए है, दैट इज़ फूड फॉर थॉट, कि जिसके नतीजे में आपने खुद इन्फ्रेंसेज निकालने हैं। अच्छा, अब सब सहारन अफ्रीका में वो कहते हैं 35-50%। ईरान में मज़े की बात है, जितने ज़्यादा वो हुए शायद वो कहेंगे जी ये इस्लामियों की हुकूमत आ गई थी, तो 34-44% हो गया। बाहर इट इज़ गुड इंसिडेंस। तीसरी बात यह है कि हिजाज में कहते हैं कि प्री इस्लामिक पीरियड में भी, इस्लामिक में भी, बल्कि प्री इस्लामिक में ज़्यादा था, इस्लामिक में जो था परसेंटेज कम थी। अरब कंट्रीज में ऑल्दो वो कहते हैं, बड़े अजीब सी स्टेटमेंट मैंने वो आर्टिकल्स में से उठाई कि हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड, और रेट क्या था, दैट वाज 25-30%, दैट इज नॉट हाईएस्ट। अभी से पीछे मैं आपको कितने हाईएस्ट रेट्स बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद सीरिया का जो था, सीरिया की वैसे बड़े मजे की बातें हैं कि वो लोग कहते थे कि जो कज़न है ना उसका हक पहला होता है, तो हक पहला होता है अगर किसी की शादी फैमिली से बाहर डिसाइड हो गई है ना और बारात आ गई है और कज़न खड़ा हो जाए कि जी मेरा हक है मैंने करनी है, तो मौलवी साहब कहते हैं इससे होगी शादी, पहले ये होता था वहाँ पर। तो लेकिन ये है, वो डिपेंड करता है, रेंज है उनकी 24-70% ऑफ कज़न मैरिजेस। ये मैं आपको जो फ्रीक्वेंसीज या इंसिडेंस बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ कि आपके जहन में एक आइडिया हो कि दुनिया में असल में कज़न मैरिजेस का स्टेटस क्या रहा और क्या है। मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस का इंसिडेंस है, पर्टिकुलरली वो कहते हैं इसराइलियों में बहुत ज़्यादा है, यहूदियों में बहुत ज़्यादा है। इवन वो जैसे कहते हैं बहन मतलब भतीजियों और भांजियों से भी शादी कर लेते हैं, उसको भी वो कंसेंशियस मैरिज कहते हैं। उसके बाद इंडिया में हैरत की बात है जिसमें कहा जाता है बड़ा ज़्यादा, जो भी हमने बातें ढेर सारी अर्ली मैरिजेस की भी इंडिया के हवाले से देखी हैं और कुछ, लेकिन वो बड़े अजीबोगरीब लोग हैं। पूरा एक इतना बड़ा आर्टिकल है जिसमें हर स्टेट का परसेंटेज दिया हुआ है एंड दैट परसेंटेज रेंजेस फ्रॉम 1 to 38%। पता नहीं मानने वाली बात है कि नहीं, हम 60% हैं, वो सिर्फ 38% है। आई डोंट बिलीव इट। इसलिए एक बात जहन में रखिए कि जब भी आपके पास स्टेटिस्टिक्स आते हैं यू शुड बी मोर क्रिटिकल। आपके सराउंडिंग्स में भी तो चीज़ें नजर आ रही हैं ना आपको। फिर उसके बाद असल में ये था कि जो ये मुलबालिक है ना, जो बड़े बड़े गोरे डिवेलप्ड सिविलाइज्ड जिसे कहते हैं एनलाइटेंड, उनके यहाँ भी बहुत इंसिडेंस था पास्ट में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह वगैरह। और ये तस्वीर जो आपको मैं दिखाऊंगी, इसमें ये जो डार्क है ना, ये कौन है, ये वो मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है फैमिली मैरिजेस की अभी इस वक्त। और ये बाकी ब्लू आपका ये देख लें, पूरा इंडिया, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये सारा हिजाज का एरिया, ये अफगानिस्तान उसका ईरान, ये अफगानिस्तान, और ये आपका ये कंट्री का नाम मुझे नहीं आता। आप यहाँ से इधर टर्की की तरफ भी चले जाएँ, ये सारे ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो तेज रंग है, दीज आर द कंट्रीज विच हैव गॉट हायर रेट ऑफ कज़न मैरिजेस। वेयर एज ये जो लाइट कलर्स हैं, ये बाकी पूरी दुनिया है जहाँ पे कज़न मैरिजेस होती ही नहीं है, तो रौला किस बात का, बहुत कम है। या आपके अमेरिका के जो 52 स्टेट्स हैं उनमें से 25 में, 52 नहीं कम है स्टेट, 25 में कज़न मैरिजेस आर इलीगल। वो और भी अगली स्टेप भी है कि वो शादियां वैसे करते ही कोई नहीं है। तो ये बात जहन में रखिए कि अगला जो सिचुएशन क्या है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कज़न मैरिज के बारे में, लीगल है कि इलीगल है। तो आप देखें कि असल में तो बहुत सी जगहों के ऊपर इसको लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, और कहीं अंडर हैंड भी लीगल है, कहीं ओपनली लीगल है, कहीं डिक्लेयर नहीं किया जाता, बट स्टिल इट इज़ बीइंग इनकरेज्ड। कज़न मैरिजेस वो पास पास रहते हैं ना तो मोहब्बत हो ही जाती है। तो दूसरी बात ये है कि इन कंट्रीज़ में जिन्होंने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें चाइना भी सर फहरिस्त है, ठीक है, तो ताइवान, कोरिया, फिलिपाइंस, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह वगैरह, और उनके अपने गोरे कहते हैं कि दिस लॉ इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ नॉट अ राइट लॉ। तो जब ये लॉ बने तो फौरन ही उसका रेजिस्टेंस शुरू हो गया उन्हीं के अंदर से, और उन्होंने रिपील करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। फिर असल प्रॉब्लम ये है, उन्होंने एक और दूसरा जो था, जैसे आपका सोशल मीडिया, वो क्या करता है कि उसने इसको सोशल स्टिग्मा बना दिया। अमेरिका की जैसे बात है कि वहाँ पर वो ये कहते हैं कि कज़न से शादी करना तो बहन से शादी करने के बराबर, नहीं नहीं हमने नहीं करनी है। और उसका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांगली फैल चुका है कि अब की यूथ जो है वो किसी सूरत याद राजी नहीं होती कज़न मैरिज के लिए, तो आपको लॉ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, दिल ही बदल गए, ठीक है। उसके बाद ये एंशियंट पर्शिया जो था उसमें किंग जो थे अपनी कज़नों से, नीस और भांजियों से भी शादियां कर लेते थे। आपकी आगे नहीं जा रही, ये देख लें कि ये मैप है जहां پر ایریاز جہاں پر انلیگل ہیں قدر لیگل ہے قدر میرجز. اس میں پھر وہ رنگ دیکھ لیں کہ جس میں تھوڑا سا میرا نا ہل رہا ہے. یہ جو بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ کزن میرجز لیگل ہیں. اور وہ جو پچھلا میپ تھا اس میں تھا کہ انسیڈنس کے لحاظ سے تھا کہ ہوتی نہیں کزن میرجز. یہ لیگل ہونے کے ساتھ آپ یہ کالا رنگ امریکہ میں جو دیکھ رہے ہیں نا یہ والا دیکھو کئی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ الیگل ہیں کزن میرجز. یہاں پہ یہ الیگل ہیں. یہ انڈیا میں ایسا ہے کہ ریلیجن اور کلچر کے مطابق انہوں نے اس کو لیگلائز کیا. وہ دیکھیں نا سیکولر ملک ہے اس بات پہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے. کینیڈا آسٹریلیا میں لیگل ہے. یہ آپ کا ساؤتھ افریقہ اس میں بھی حیرت کی بات ہے. یہ پورا رشیا جو ہے اس میں بھی لیگل ہے اور یہ چائنا ہے درمیان میں. یعنی دنیا کی ایک بڑی میجورٹی میں یہ لیگل ہے ود اور ود آؤٹ ایکسیپشنز. ٹھیک ہے. اور ان لیگل جو ہیں وہ صرف یہ آپ کو تین جگہ نظر آتی ہیں جہاں پہ یہ بینڈ ہے اور کرمنل آفینس بھی سم ٹائمز اور اس پہ سزائیں ہو جاتی ہیں. دوسری بات کنٹریز کے اندر انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پیچھے پاس میں چلے جائیں کیتھولک چرچ کا رول تھا اٹلی وغیرہ ان سارے یورپ کے اندر تو ان کا جو حکم ہوتا تھا وہ چلتا تھا. اس میں شروع میں انہوں نے کہا کہ جو فور ڈگری کنسینجونیٹی ہے کہ بھئی اس وقت تک جو ریلیٹڈ ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی گڑبڑ ہے تو انہوں نے اس کو سیونتھ ڈگری ریلیٹیو تک انکریز کر دیا. پھر اس کے بعد اٹلی میں جو پرٹیکولرلی جو 50% شادیاں جو ہیں وہ کزن میرجز ہوتی ہیں. پاکستان میں 60 اور 60 میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ چاہے وہ محل مسلمان ہے چاہے کرسچن ہے یا کچھ ہے سبھی میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کزن میرجز کا. اور اس میں لیگلی الاؤڈ ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور پریفریبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا ہم کیوں مینٹین کر کے رکھے ہوئے اب تک کزن میرجز کو کہ ہم اپنی کلچر سے اپنے ٹریڈیشن سے اپنی تہذیب سے محبت کرتے ہیں. ابھی تک برقعے پہن کے بیٹھے ہیں پرانے زمانے کی طرح ہم کرتے ہیں. ہم نہ بھی پہنتے ہوں تب بھی ہم کرتے ہیں. ابھی ہم جڑے ہوئے ہیں اب اپنے پاسٹ کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ. نمبر ٹو یہ کہ یہ خیال ہے کہ خاندان میں شادی ہوگی تو وہ آپ کو یاد ہے نا محاورہ وہ جو کہتے ہیں اپنا مارے گا تو ٹھنڈ چھاؤں وچ پائے گا. دیٹ از ویئر دا تھنگ دیٹ اٹ اسٹرینتھنس فیملی ریلیشنز. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک اس کی ویلیو ہے کہ خاندان میں شادی ہو تو دیٹ از پریفریبل. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے خاندان میں ہو تو ذرا بیک مضبوط اور وہ خاندان کی لڑکی اپنے دریال میں اور دادکوں میں. تیسری وہ بات کرتے ہیں اس لیے شادیاں ہوتی ہیں کہ پرانے زمانے میں نا وہ پتہ نہیں عجیب سے یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو دیا گیا اور گوروں نے لیٹسٹ اپنے آرٹیکلز میں کہ جی وہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی تھیں ناؤ اٹ ہیز امپروو تو وہ یو کین ایزلی موو اراؤنڈ اینڈ فائنڈ اے میٹ. تو اب اس لیے خاندان سے پہلے وہ لوکلائزڈ ایریا تھا پاس ہی رہتے تھے آس قریب سے رشتہ ڈھونڈ لیا اپنی گلی میں اپنے محلے میں چاچے مامے کی بیٹی سے اینڈ سو دیٹ فیسلیٹیٹڈ فیملی میرجز اور کزن میرجز. اس کے بعد یہ غلط سوال ہمارے خاندان کی لڑکی کہیں اور جائے گی ہمارا انفلوئنس ختم ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکیں گے ہم نیچے ہوں گے سسرالیوں کے مقابلے میں. اور پھر خاندان کی شادیوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایک معاشرہ ہے جس میں لڑکیوں کے پیسے دیے جاتے ہیں تو پیسے شیسے نہیں زیادہ دینے پڑیں گے اور آرام سے وہ گھر کے سارے کام کرے گی. और फिर वो इसको एडअप करते हैं। ये भी जो पॉइंट है ये वेस्टर्न आर्टिकल से है कि इस्लामाइजेशन एक और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था कि जिसकी वजह से कज़न मैरिजेस स्टिल परसिस्ट कर रहे हैं। अब कज़न मैरिजेस क्यों कम हो गई हैं, क्यों कम होती जा रही हैं, सोशल नॉर्म्स बदल रहे हैं, टैबू बन गया है कज़न मैरिज। खानदान वैसे ही छोटे हैं, एक दो कज़न होते हैं, वो भी आपके अगर उम्र का गैप है, फ़र्क है, तो शादियाँ नहीं हो सकती हैं। और दूसरे लोगों के साथ ख्वातीन का एक्सपोजर बढ़ गया है, ख्वातीन इंडिपेंडेंट हो गई हैं, दे कैन मूव अराउंड, दे कैन फाइंड अ पार्टनर और वगैरह वगैरह। और सबसे बढ़कर जो हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माइंडेड हैं, वी थिंक दैट दे इंक्रीज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इस वजह से आप इंसिडेंस वुड बी ग्रेजुअली फॉलिंग डाउन। अब अगर ये बात है तो फिर देख लें कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस जिसका इतना ज़्यादा चर्चा है, एक्चुअली उसकी हैसियत क्या है, उसका लेवल क्या है। हम सब ने FSC में बेंडल्स लॉ और सारा कुछ पढ़ा, इनहेरिट वो जो शेयरिंग ऑफ जीन्स का पढ़ा, क्रोमोसोम्स का पढ़ा, XY सेक्स रिलेटेड का भी पढ़ा, और उसके मुताबिक हमने कहा जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं, वो 50% जो होती हैं उनके जो जीन्स होती हैं, देवर कॉमन विद आइदर द पेरेंट। हाफ सिबलिंग जो सेकेंड डिग्री होते हैं, उनका जो बहन भाइयों का आपस में जो होता है, दैट इज़ अबाउट 25%। फिर उसके बाद फर्स्ट कज़न में 12.5% कॉमन आ जाती हैं चीज़ें, सेकेंड कज़न में 6.25, थर्ड कज़न में 3%, और सेवन्थ कज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सेवन्थ कज़न में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों की ये रिसर्च है, वेस्ट की है ना, तो आपके चर्च ने सेवन्थ कज़न को क्यों बैन कर दिया, जबकि उसका स्टेटस वही है जो किसी फार नॉट रिलेटेड पर्सन का जिससे शादी हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो कंपैरिजन जहन में रखिए कि जो वो कहते हैं इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कज़न मैरिजेज में वो 4.7% है फर्स्ट कज़न मैरिजेज में, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड पेरेंट्स होते हैं जो जिनका आपस में ताल्लुक नहीं होता, उसमें 3-4% है। कितना फ़र्क है, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक और हैवी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फिर ये सारी बातें हमने मेडिसिन में पढ़ी, बीइंग अ डॉक्टर सारे डिसऑर्डर्स पढ़े कि वो सारे जेनेटिक या इनहेरिटेंस या सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों में जहाँ पर वो जो अगर रिसेसिव वाली बात है, तो रिसेसिव जो है कि अगर दोनों पेरेंट्स में है तो वो इकट्ठा होगा तो मैनिफेस्ट होगा डिसऑर्डर, अगर डोमिनेंट है तो वो फिर एक ही की वजह से मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कज़न मैरिज है कि नहीं है, जिस भी पर्सन में डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रेयर, ये कॉमन प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर वो कहते हैं रिसेसिव कंडीशंस में ना सिर्फ 1-3% जो चांस है डिसऑर्डर्स का, और फिगर इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट कज़न से अगले स्टेप पे चले जाएं, मतलब तो फिर वो चांस जो है 0.75-1.5% रह जाता है। फिर उसके बाद स्टिल जो है ना, अगर हम कहें कि वो रिमोट और वो अम्मा अब्बा ट्विन्स भी थे तो डबल भी हो गया, तो स्टिल डबल होके कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ये बातें क्या थी, हाँ, वंस रिमूव्ड का ये होता है कि दरमियान में जो है ना फर्स्ट कज़न की शादियाँ होती हैं, जैसे चचा मामू के बच्चों की या खाला मामू के बच्चों की, लेकिन उसमें ये होगा कि खाला मामू से एक स्टेप आगे चले जाएं, यानी कई दफ़ा आप ऐसे करते हैं ना कि जैसे वो जो अब्बा के कज़न होते हैं उनसे शादी हो जाती है, तो वो उसमें आपका वो फर्स्ट कज़न एक दरमियान में से जो रिमूव्ड हो जाता है, वो अगला स्टेप है कि एक तो वो है लेकिन एक दूसरी साइड पर जो है दैट इज़ रिमूव्ड, वो स्टेप एक ज़रा सा फार हो गया है, एग्जैक्टली दूसरा पार्टनर फर्स्ट कज़न नहीं है, तो उसको फर्स्ट कज़न रिमूव पे कंसिडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस आर्टिकल में देखी कि उन्होंने रिसर्च की अबाउट 13 मिलियन लोगों के ऊपर, और उसका पीरियड आप देखें कि वो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया 1650 से 1850 तक, 1850 तक 200 साल का, इसमें वो कहते हैं कि पहले जो बंदे थे वो आपस में जो शादियां हुई हुई थी दे वर फोर्थ कजन्स, और उसके बाद जब उन्होंने देखा 1950 में 100 साल के बाद तो पता चला कि दे वर सेवन कजन्स सारे माशरे के अंदर। वैसे वो कजन्स बज़ाहिर नहीं हैं, मतलब आपकी वैसे रैंडम शादियां हुई हुई हैं, बट दे आर, अगर पीछे डाटा फैमिली ट्री चेक आउट करें बाय जी जेनेटिक एनालिसिस, अब तो ये सब कुछ पॉसिबल है ना। अभी उनके पास मशीनें हैं तो ऐसे सारे काम करते रहते हैं मज़े मज़े के, बिल्कुल इनोवेटिव किस्म के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेसिकली हम देखें ना दूर एक्चुअली जाकर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो हम सारे एक ही फैमिली हैं। आजकल की जितनी जंगें हैं वो ख़ानदान के अंदर हो रही हैं। दिस इज देयर कंक्लूजन। और फिर मतलब वो ये कहता है कि अगर एक जनरेशन का भी डिफरेंस आ जाए ना तो वो कम से कम फोर फोल्ड उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। बीइंग अ डॉक्टर जो है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए इन चीज़ों में। क्यों? पेशेंट जो है आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, वो फतवे के लिए भी कहीं जाता है ना तो कहता है डॉक्टर क्या कहता था, और फतवा भी जब आप लेंगे तो डॉक्टर अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुफ्ती साहब को इन्फॉर्मेशन देगा तो वो फतवा सही आएगा। और फतवे पर्टिकुलर केसेस के लिए होते हैं, एक जनरलाइज फतवा बहुत कम होता है कि जनरलाइज फतवा जी ये हलाल और ये हराम है। नो, आप अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फैमिली हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि यहाँ करें या यहाँ ऐसे करें। अब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स में देखें, बुद्धिज़्म में कोई ऐसी उन्होंने खास पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि लीगल है या इलीगल है, वो कहते हैं बस एथिकल होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। क्रिश्चियनिटी में सेवंथ कज़न है, जो थे आपके ज्यूज़ के अंदर कोई मसला नहीं है, खानदानी शादियाँ क्लोज में, इवन वो जो हराम रिश्ते हैं उनमें भी। हिंदू के अंदर वो उन्होंने बिल्कुल वो जो क्रिश्चियन से की तरह के पहले उनका जो पास्ट में था कि पिछली पांच पीढ़ियों तक यानी पांच जनरेशन तक दे कैन नॉट मैरी, फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको हला हथ कर दिया जो अप टू थ्री जनरेशन, वो कहते हैं कि आप शादी नहीं कर सकते उसके बाद कर सकते हैं। रोमन कैथोलिक जो हैं उसमें वो कहते हैं कि ठीक है फर्स्ट कज़न से कर लें, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा आपस में ना हो उसको एहतियात किया जाए, उसको देखा जाए, चेक किया जाए, काउंसिल किया जाए। सिख जो हैं वो उनके अंदर बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि वो थोड़े से भी हैं वो भी कोशिश करते हैं ख़ानदान में शादी ना हो तो अपने शहर में ना हो, दूसरे शहर में ज़रा दूर पार में हो जाए ताकि वो कज़न मैरिजेस ना हो, लेकिन एज सच वो डिक्लेयर नहीं इसको करते कि लीगल है या इलीगल है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव सबसे बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है, सबसे बेहतरीन पर्सपेक्टिव है, जिसमें ये सारी ये जो स्लाइड है मैं पढ़ूंगी नहीं, ये हम सब जानते हैं कि शादी की क्या हैसियत है ख़ानदान इसमें इस्लाम में, निकाह का क्या तकद्दस है और ये रिश्तों को किस तरह मोहतरम बना देता है। इसके साथ जो स्टेटस होता है आदमी का आफ्टर मैरिज वो ये होता है कि वो राही है ख़ानदान का, रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर उस केस में वो जब रिस्पॉन्सिबल है तो वो जो कहते हो ना अपनी औलाद के लिए अच्छी मायें तलाश करो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस्लाम में शादी का पर्सपेक्टिव ही इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम अदर रिलीजन्स, और उसमें भी वो कहते हैं बलूगत और वो रेडी हो जैसे बातें पहले डॉक्टर इस्माइला ने डिस्कस कर ली हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या हदायत मिलती है कि हमारी क्या क्राइटेरियन होना चाहिए शादी के लिए, कि लोग देखते हैं हुस्न माल नसब खूबसूरती, तुम दीन देखो। और दीन देखने भी क्या मतलब है कि दीन है कि मुसलमान हो ना, तो उस पर क्लियरली उसको कुरान एम्फोसाइज करता है कि मुशरिक से शादी नहीं करनी, बिकॉज आपका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज दीज इन्वाइट यू टू फायर, तो आप खुद तो फायर में जाएंगे, अपने पूरी जनरेशन को फायर में लेके जाएंगे मुशरिक से शादी करके, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। फिर अब आगे उसवे हसना देखें, उसवे हसना में हमें जो नज़र आता है टिपिकली कि आपने अपनी कज़न से भी शादी की, अपनी एक और रिश्तेदार से भी शादी की हज़रत उम्मे हबीबा से, और फिर उसके बाद अपनी दोनों बेटियों की शादियाँ कज़न से की, मतलब हज़रत फातिमा की चचाजाद भाई से की, हज़रत जो थी जैनब की जो थी खालाजाद भाई से की, वो थे चचाजाद भाई उनके भाई थे रसूलल्लाह के, यानी उस तरह से फर्स्ट कज़न नहीं थे, अपने कज़न थे फर्स्ट। حضرت عثمان بھی اس طرح سے سیکنڈ کزن تھے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو رول ماڈل پرسنالٹی ہے جس سے آپ امپریس تھے, جس کو فالو کرنے کا, جس سے محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے اگینسٹ یو وڈ تھنک آف کریٹنگ اے بل, پٹنگ اپ اے بل, ڈسکسنگ اے بل, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو تانہ پاکیزگی کا تصور معاشرے میں اور سکینت کا تصور میاں بیوی کے ریلیشن شپس میں جو اسلام ہمیں دیتا ہے, اس میں ایک ایسی بات اگر امپورٹنٹ ہوتی کہ بھئی ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے شادی کو پہلے دیکھ لو, لیکن یہ بات ہے کہ مضبوط نسلیں یہ امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے, اور اچھی عورتوں سے شادی کرنا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس اچھی عورتوں میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ دین ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد یہ قرآن میں پھر آپ دیکھ لیں کہ ڈگری آ گئی, یہ آپ کے سامنے ایک پورا فیصلہ آ گیا کہ کس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اس میں کزن میرج کلیئرلی اللہ تعالیٰ مینشن کر دیے کہ اس سے آپ کر سکتے ہیں شادی, تو آپ کیسے اس سے کانٹری لا بنا رہے ہو, سوچ کیسے رہے ہو. دیکھیں اللہ کی جو بات ہے وہ تو زمانوں کے لیے ہے, اللہ کی بات ایک رول ہے, اس سے جو ہے ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں ان پرٹیکولر کیسز, ان اسپیسیفک انسٹانسز, لیکن اٹ کین ناٹ بی میڈ رول اگینسٹ اٹ, وی کین ناٹ میک اے رول اگینسٹ. اس کے بعد پھر آپ کو بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان سے شادی نہیں کرنی, اس میں کزن کا کہیں نام نہیں ہے. تو ہاؤ یو آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ, پوری تفصیل بتا دی ان سے نہیں کرنی. اس میں حرمت کے لحاظ سے, رشتوں کے تقدس کے لحاظ سے یہ بھی کہا کہ بیوی کی پہلی بیٹی ہے نا تمہارے گھر میں پرورش پائی ہے, اس سے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہیں ایز اے مطلب ایویڈنس یا ایز اے امپورٹنٹ فیکٹر یا پوائنٹ. پھر یہ بات تو میں نے آپ سے کر لی, تو یہ جیسے ابھی شمائلہ نے بھی آیت کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حد سے نہ تجاوز کرو. حد سے تجاوز کرنے میں یار تم نے تو مجھے کہا تھا زیادہ کام ہے, اس لیے میں آرام آرام سے کوٹ کر رہی تھی, تو میرا تو آدھا سارا رہتا ہے. اچھا, اس میں حد سے تجاوز کرنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم دیکھیں ایک پرٹیکولر سچویشن میں ایک فیملی میں جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور آپ ریپیٹڈ ہسٹری آ رہی ہے, آپ نے پوری ہسٹری ٹیکنگ کی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر اب آپ پھر کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر حد سے تجاوز کرنے میں شاید آپ انکلوڈ کر سکیں. میں اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہوں, یہ ایک رائے ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو کزن میرجز جو ہے دیٹ از پرمیشن, یہ آبلیگیشن نہیں آپ کے اوپر, تو اس کو اس طرح سے بھی اپنے آپ کو باؤنڈ تصور نہیں کریں کہ لازمی خاندان میں شادی کرنی ہے. مطلب یہ آپ کو اجازت دی گئی ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جہاں ہم بہت کنسرنڈ ہیں جینیٹک اب نارمیلٹیز کے بارے میں, جینیٹک ڈس آرڈرز اینڈ دیئر انسیڈنس اینڈ دیئر فریکوینسی اینڈ دیئر پرسنٹیجز ان ڈفرنٹ ویز, اس کے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب نے یہ آیت بہت دفعہ پڑھی اور بہت کانٹیکس ڈفرنٹ میں پڑھی, الست بربکم والی بات, کہ ساری جو تھی وہ انسانی جو نسل تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور ان سے اٹھ لیا, سو اٹ از ڈسائڈیڈ ہو ول بی بورن اینڈ ون ول بی بورن. اس پہ ایمان ہے اکارڈنگ ٹو دس آیت, یہ ہم دیکھ لیں. اور پھر اگلا سٹیپ یہ کہ احادیث اس میں بہت آتی ہیں, کہ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں صحابہ پوچھتے تھے تو آپ نے کہا ڈو یو ریئلی ڈو دیٹ, تین دفعہ پوچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا دیر از نو سول دیٹ از ڈیسٹنڈ ٹو ایگزسٹ بٹ ول کم ان ٹو ایگزسٹنس ٹل دا ڈے آف ریزریکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کا بچہ وہ ٹپیکلی اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے, اسی طرح سے کنسیو کیا جاتا ہے جس طرح باقی سارے مخلوق ہیں, اور دیر از سم تھنگ ایلس, کوئی اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈسیشن اس کے علاوہ بھی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کسی خاتون کی شادی کسی سے ہوتی ہے, دونوں ٹھیک ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, اور پھر اس خاتون بھی کہیں اور شادی کر کے خوش ہوتی ہے, مرد بھی خوش ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ایسا ہی لکھا تھا, اس روح نے آنا تھا, یہ ساری بڑی بوڑھیاں یہی کچھ بول رہی تھی, کوئی گل نہیں. پھر What was the principle behind that? और फिर आप देखेंगे जी, फिर एक और हदीस जो है यहया बिन हबान से कि अल्लाह हैज ऑर्डेंड हुम ही हैज टू क्रिएट अंटिल द डे ऑफ जजमेंट. ये सही मुस्लिम और सही बुखारी से रेफरेंस के साथ हदीस है. और फिर अगला स्टेप, जब मैंने ये हदीस पढ़ी ना अगली वाली शैतान वाली, तो मुझे बड़ा क्लियरली किया हुआ ख्याल ये आया कि हम हदायात को तो फॉलो करते नहीं नज़दबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर हम बैठ के एस्टिमेट लगाना पड़ते हैं इतने परसेंट इंसिडेंस ऑफ दिस एंड दैट. जब बड़े क्लियरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब बीवी के पास जाओ तो ये दुआ मांग लिया करो, तो शैतान उसको अभी ज़ाहिर अभी तो जायगोट भी नहीं बना ना, स्पर्म उधर है, ओवा उधर पड़ा है, अभी तो मिले भी नहीं, उससे पहले ही आप उनको जो मिल के वजूद में आना है उसको अल्लाह की पनाह में दे देते हैं. तो फिर कैन जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज डिवेलप, मतलब ये तो हमारे अपनी सोच की बात है ना, कि अगर हम इस यकीन के साथ, वो जो बच्ची वाली बात थी ना कि छतरी दुआ मांगने जा रहे हैं बारिश की तो छतरी ली भी है साथ, जी बारिश होगी तो ज़ाहिर छतरी पास होनी चाहिए, ईमान की इंतहा है. तो अगर आपके पास दुआ की छतरी है तो वाई यू आर अफ्रेड. फिर उसके बाद अगला ये जो है कि व्हेन अल्लाह इंटेंड्स टू क्रिएट एनीथिंग नथिंग कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. तो सवाल ये मेरे भी जहन में आता है, आप इस पे सोचिए और इसके बाद अगर आप इस पे बात करना चाहें कि क्या ये चांस होता है कि कोई बच्चा वजूद में आता है, जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ये अल्लाह का फैसला होता है. और इतने ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर स्पर्म सिर्फ मिलता है, और वो कौन सा स्पर्म होगा इतना खुश नसीब और सक्सेसफुल, ये किसका डिसीजन होगा. अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें अता की उसमें बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं कि वो तमाम बातें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनसे मना किया गया है, जो तमाम बातें फ़ायदेमंद हैं उसकी इजाज़त दी गई है. और यहाँ पर जो शरिया का पर्पज़, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, इसको मैं रिपीट भी नहीं करूँगी, आगे चलूँगी कि जो सारी चीज़ें हैं. तो फिर हम ये भी करते हैं कि जब हम कोई भी किसी सिचुएशन में, कोई मसले में जब हम बैठ के सोचने लगते हैं और फैसला करने लगते हैं, तो हम सारी बातें देते हैं, इक्वल वेटेज देते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज क्या है, उसके अंदर सारी सिचुएशन क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, परसेंटेजेस क्या हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, एटियोलॉजी क्या है, और उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हैं कि जो आपका एविडेंस कितना सही है. अभी मैंने शुरू में बार बार आपको जो कह रही थी ना, ये इंसिडेंसेस हैं, डू यू एग्री विद देम, तो एविडेंसेस मे नॉट बी सो मच कि आप समझें कि आप आंखें बंद करके उन पर ईमान ले आएं और उसके ऊपर आप ये फैसला कर दें कि इतना इंसिडेंस है तो इसलिए इसको इलीगल कर दें. शरिया में हमेशा दीन वस्त है हमारा दीन, और हम दरमियान में चलते हैं, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ कहता है. और इसके बाद आधा पड़ा है और मेरा टाइम ख़त्म हो गया. थैंक यू सो मच. हैं ऐसे दिखा दूँ, ये एक सवाल था जो कि नेट पे लोगों ने ना पॉइंट आउट करके, ये मुझे लगता है जैसे मिस गाइडेंस होती है. तो उन्होंने कहा जी वो हदीसें हैं कि जिसमें रसूलल्लाह ने कहा कि ख़ानदान से बाहर शादी करो, इसको फैसिलिटेट किया और उसके बारे में कहा गया कि ये ज़ईफ़ हदीसें हैं. अगर आपको कहीं से इनका कोई रेफरेंस मिलता है, मुझे तो नेट पे नहीं मिला रेफरेंस, ठीक है, तो वो फिर ज़रूर हम उसको देखें और कंसिडर करें. नंबर टू ये है कि वहाँ नेट में ये भी था कि जी हम्बली और शाफी जो हैं वो कहते हैं कि ये मकरूह है उनके नज़दीक, उनके फिक में, जबकि उस आर्टिकल के अंदर जब मैंने डिटेल में गई तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन हेडिंग ऊपर ये थी और वो मुख्तलिफ जगहों पे वो आर्टिकल उन्होंने रखा हुआ नेट के ऊपर. उसके अलावा ये जो इब्ने कुदामा और गजाली के बारे में उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि चूंकि फैमिली बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको वीकेंड नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई आपके पास दो अल्टरनेट्स हैं कि एक विदाउट ऑफ द फैमिली है, एक इन द फैमिली है, और जो दोनों एक तरह से हैं कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो आप प्रेफर करें इन फैमिली वालों को कि उससे फैमिली बॉन्ड स्ट्रांगर होगा. और ये बाकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं सारे ये आपको पता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, ये सारा मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है ढेर सारी, और पाकिस्तान के लिहाज से भी जो आर्टिकल्स पाकिस्तानियों ने लिखे 1997 से लेकर आज तक 2019 तक आखिरी आर्टिकल आया जो पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस उसको रिलेट करते हैं, उन सारी बातों को जहन में रखते हुए, लेकिन गोरा कहता है, एलन बिटल जो है वो ये कहता है कि जो आउटकम आप कंक्लूजन निकालते हैं ना, दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू असेसमेंट सोनली इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव मेडिकल ऑडिट, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, जो इसके वो है ना कज़न मैरिजेस के हक में जो काम कर रहे हैं, और इस बेसिस के ऊपर आप लेजिस्लेशन अगर बनाते हैं दैट इज़ अगेंस्ट द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो वायलेशन ऑफ मैरिज है कि मेरा मर्जी है ना, मैं जिससे मर्जी शादी करूँ, हुआ यू जब मियाँ बीवी राजी कहें तो क्या करेगा काजी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारा कल्चर नहीं, बाकी नॉन मुस्लिम कल्चर्स डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी में वर्ल्ड में वो ये कहते हैं कि कज़न मैरिजेज आर एसोसिएटेड विद मोर चिल्ड्रन विद हेल्दी चिल्ड्रन, इसलिए वो कज़न मैरिजेज ही करते हैं। और उसके एविडेंसेस उसके स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये देते हैं, आइसलैंड में पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि वो जो हैं वो कहते हैं कि जनाब लाजम एटलीस्ट थर्ड फोर्थ तक तो ज़रूरी हो जाना चाहिए कज़न मैरिजेज, और इससे बच्चे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे पैदा होते हैं। आप देखें ना आइसलैंड में वैसे बच्चे थोड़े होंगे तो उनको बच्चे ज़्यादा चाहिए, आबादी चाहिए, और वो उनको ये लगता है कि इस तरह से उनकी आबादी ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद ये एक बात है जो गोरों के अपना आर्टिकल है पूरा फुल, वो कहते हैं दुनिया में डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में 70% तक चला गया, जस्ट बिकॉज कि आप डिस्करेज करते हैं कज़न मैरिजेज में, कज़न्स की आपस में मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक माशरे में एक जगह करीब रह रहे होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, आप दो मुख्तलिफ अजनबियों को इकट्ठा कर दें जितनी मर्जी डेटा लगा लें बट स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड, साल बाद कहते हैं हमें आप समझ में आइए कि हम नहीं रह सकते, हम अंतरलाक ले लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वन ऑफ द रीज़न मे बी दैट कि वहाँ पे आपने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके लोगों को इससे मुतनफ़र कर दिया और कज़न मैरिजेज में। इसका बैकग्राउंड मैं बोलती जा रही हूँ, सॉरी ख़त्म कर दूँ बस क्या बस है, ये मेरे ख्याल ख़त्म, ये सारी आप बातें बैकग्राउंड सिनेरियो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर किसी मौके पे इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि जो इसको सिर्फ नटशेल में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इस पर असल में जो सारी चीज़ें जहन में रख के गोरे खुद कहते हैं ये बात ये इस तरह समझ में नहीं आती, तीन किताबें बहुत बड़ी बड़ी लिखी गई हैं जिन पे सिर्फ नुकसान बताया, और वो कहते हैं कज़न मैरिज से डेमोक्रेसी को ख़तरा है, पावर को ख़तरा है, कज़न मैरिजेज में लोग फैमिली स्ट्रांग होती है तो वो फिर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर जो सिलेक्ट होके आते हैं, तो असल कहानी तो ये है, और बाकी आप जो मर्जी ज़ेब दास्तान के लिए कहें। और फिर वो ये कहते हैं कि जी नेपोटिस्टिक रिलेशन आ जाते हैं, पावर और यूनिटी उन्हीं चंद हाथों में रहती है, और फिर उसके मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, और हमारे जो प्लान्स हैं वो कामयाब नहीं हो सकते वगैरह वगैरह, थ्रेट टू पावर है, तो इसलिए फिर हमने इसको दूसरे कपड़े पहना के पेश किया आपके सामने कि कज़न मैरिजेज ना करें, आपकी वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये कहते हैं इतना कम रिस्क है, इससे ज़्यादा रिस्क तो बाकी चीज़ों में हम जो सारे मैंने इसमें मेंशन की ना, लेट मैरिजेज को आप इनक्रेज करते हैं उसमें इतना हाई रिस्क होता है उसके जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ का, उसको क्यों नहीं आप ख़त्म करते, ख्वातीन को क्यों नहीं बताते भाई कि ये तुम्हारे रिस्क लाइफ है जो आप गुजार रही हैं लेट शादियाँ करके, कोकेन और अल्कोहल और इन सब के अंदर जो इंसिडेंस है एबनॉर्मेलिटीज़ का वो कज़न मैरिजेज से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है, तो उनके ऊपर तो आपका कोई काम नहीं है, उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है, फीमेल की पूरी ज़िंदगी उसके स्टेक पर लग गई है उन रॉन्ग जो लाइफ स्टाइल के ऊपर वजह से, उस पर आप काम नहीं करते, तो आपका सारा जोर कज़न मैरिज के ऊपर जा रहा है। और बस वो ये कहते हैं कि ये जहन में रखिए कि हम इतना जो एविडेंस स्ट्रांग नहीं है अबाउट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड परसेंटेज और इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक नॉर्मेलिटीज इन कज़न मैरिजेस के आप लॉ बना के इसको बैन कर दें, उसमें गोरे खुद ही कहते हैं कि लेटेस्ट सब्सटाइल ही होना चाहिए कि आप बैठें, आप कपल जो है जो शादी करना चाहता है उसकी पूरी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करके फिर अगर फैमिली में हिस्ट्री में कुछ पता ये चलता है कि कोई है ऐसा इंसिडेंस तो फिर उनका टेस्ट करा लें, जेनेटिक कैसे जितने भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है सारा कुछ, यू कैन ईजी रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी इन द फीटस इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसमें एक लेजिस्लेशन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो टेस्ट ट्यूब भी करा लें आराम से, पूरा चेक चुक करके ये बच्चा ठीक है, ओवा ठीक बना है और वो स्पर्म ठीक है और वो जायगोट ठीक है, तो पैसे हैं तो करा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर वो कहते हैं जो शहजाद क्लेम्स करते हैं कि इतने इंसिडेंट्स को, इसकी फर्दर वेरिफिकेशन चाहिए, इसकी बुनियाद पर लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। एंड थैंक्स।